بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم پوتر قرآن مجید کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ آج آپ پوتر قرآن مجید کے سورہ معارج کی 19 سے لے کر 29 آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ نسندیہ منشیہ بڑا لوبھی ہے، جب اسے پیڑا اور کشتی ہوتی ہے تو چیخ پکار کرنے لگتا ہے، اور جب اسے دھن سمپتی مل جاتی ہے تو کنجوس بن جاتا ہے، سوائے ان واسطوک نمازیوں کے کہ جو سدیو نماز میں اپنی آیو بتاتے ہیں اور جن کی سمپتی میں ایک اسپشٹ ادھیکار نردھارت ہوتا ہے۔ مانگنے والے دردروں اور نہ مانگنے والے ونچتوں کے لیے، اور جو لوگ پرلے کے دن کی پشٹی کرنے والے ہیں، اور جو اپنے پالنہار کے دنڈ سے ڈرنے والے ہیں कि उनके पालनहार के दंड से कोई भी बचने वाला नहीं है और जो अपने आप को व्याभिचार से बचाते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज सोमवार है, सितंबर की 13, सफर की 6 और शहरीवर माह की 22 तारीख। कार्यक्रमों की रूपरेखा आप नोट कर सकते हैं। पहले विश्व समाचार पेश किए जाएंगे, विश्व समाचारों के बाद राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम आप सुनेंगे, उसके बाद हम आपको साप्ताहिक कार्यक्रम सुनाएंगे विश्व दर्पण, और हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा जल संकट। तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। आपको बताते चलें कि हमारे इन कार्यक्रमों को आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, partstoday.com/hi, और हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है। अब आप मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। इराक के प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति रईसी से भेंट वार्ता की है। उत्तरी कोरिया ने लंबी दूरी के क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। तालिबान के भय से अफगानिस्तान के पायलटों को यूएई भेजा जा रहा है। और अब आप मरियम मेहरदादी और गायम रिजवी से विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का कहना है कि ईरान और इराक के दुश्मन ये नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध हो। उन्होंने कहा कि लेकिन इसके बावजूद दोनों राष्ट्र सभी क्षेत्रों में संबंधों में विस्तार के लिए प्रतिबद्ध हैं। तेहरान में इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल काजमी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि दुश्मनों की मंशा के विपरीत ईरान और इराक अपने संबंधों में विस्तार करेंगे, क्योंकि द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार से क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर तेहरान तथा बगदाद की भूमिका में वृद्धि होगी।
इसराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान की सैन्य शक्ति का लोहा मानते हुए कहा है कि तेहरान के पास सटीक और घातक ड्रोन हैं जो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके अपने लक्ष्य को नष्ट कर सकते हैं। ज़ायनी मंत्री बेनी गंटेस का कहना है कि ईरान ने जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार विकसित किए हैं उनमें मानव रहित विमान हैं। गंटेस ने दावा किया कि तेहरान अपने केंद्रीय प्रांत में स्थित एयरबेस को यमन, इराक, सीरिया और तालिबान के लड़ाकों को ईरान निर्मित ड्रोन विमानों को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दे रहा है। इसराइली मंत्री का कहना है कि हम बेहद सटीक और विनाशकारी ड्रोन विमानों की बात कर रहे हैं। ये ड्रोन विमान बैलिस्टिक मिसाइलों और लड़ाकू विमानों की तरह हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। ईरानी इन्हें बनाते हैं और अपने प्रतिनिधियों को सौंप देते हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इराक के कुर्दिस्तान में आतंकी गुटों को लक्ष्य बनाना उनके द्वारा ईरान के विरुद्ध की गई कार्रवाइयों का जवाब था। سعید خطیب زادے نے اپنے ساپتاہک سنواد داتا سمیلن میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ عراق کے بھیتر اور ایران کی سیما پر اپنے کئی سینکوں کی شہادت کی پرتکریا میں آئی آر جی سی نے عراق کے کردستان میں آتنکوادی گٹوں کے ٹھکانوں کو لکش بنایا۔ ایران کے ودیش منتالے کے پروکتا نے کہا کہ عراقی ادھیکاریوں کے ساتھ اوپچارک تتھا انوپچارک بیٹھکوں میں یہ بات کئی بار کہی جا چکی ہے کہ اس کی انومتی نہ دی جائے کہ آتنکوادی گٹ وہاں کی بھومی کا درپیوگ کرنے پائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران شانتی ایوم سرکشا کی استھاپنا کا پکشدھر ہے۔
امریکہ کے ساتھ پرمانو وارتا وفل رہنے کے بعد اتر کوریا نے اپنی سینیہ شکتی کا وستار جاری رکھتے ہوئے پچھلے ہفتے کے آخر میں لمبی دوری کے کروز میزائل کے کئی سفل پریکشن کیے ہیں۔ سوموار کو اتر کوریا کی کیندریہ نیوز ایجنسی نے بتایا کہ شنیوار اور رویوار کو دو میزائلوں کو لانچ کیا گیا۔ دونوں ہی میزائلوں نے 1,500 کلومیٹر دور اپنے لکشوں کو سفلتاپوروک بھیج دیا۔ اتر کوریا نے اپنے ان نئے ہتھیاروں کو مہان مہتو کے رنیتک ہتھیار بتایا ہے جو اسے دیش کے نیتا کیم جونگ ان کی اچھا کے انوروپ ہیں۔
اتری کوریا نے افغانستان میں امریکہ کے یدھ کو مانوتا کے ورودھ مہا اپرادھ بتایا ہے۔ اسنا سماچار ایجنسی کے انوسار اتری کوریا کے ودیش منترالے نے ایک بیان جاری کر کے امریکہ کے ورودھ مقدمہ چلائے جانے کی مانگ کی ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں جن سنہار کیا ہے جس کی سزا اس کو اوش ملنی چاہیے۔ اس بیان کے انوسار امریکہ نے مانوادھکاروں کی آڑ میں سنسار کے وبھن کھیتروں میں جگھنیہ اپرادھ کیے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اتری کوریا نے افغانستان میں امریکہ دوارا کیے جانے والے اتیاچاروں کی نندا کی تھی۔ اتری کوریا کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ مانوادھکاروں کا رکشک نہیں ہے بلکہ اس کی آڑ میں وہ سوئم کھل کر ان کا الگھن کرتا رہتا ہے۔
افغانستان کے پائلٹوں کو طالبان کے ڈر سے اب سنیکت عرب امارات بھیجا جا رہا ہے۔ افغانستان کی راجدھانی کابل پر طالبان کے نینترن کے پشچات اس دیش کے وہ پائلٹ جو بھاگ کر ازبکستان چلے گئے تھے اب ان کو سنیکت عرب امارات میں ایک امریکی سینیہ چھاونی میں استھانانترت کیا جا رہا ہے۔ افغانستان کی سمار ایجنسی آوا نے نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے بتایا کہ وہ ویمان چالک جن کو امریکیوں نے پرشکشت کیا تھا ان سب کو ان کے پریوار کے سدسیوں کے ساتھ سنیکت عرب امارات میں ایک امریکی سینیہ چھاونی میں استھانانترت کیا جا رہا ہے۔ انہیں پائلٹوں میں سے ایک نے رویٹر سماچار ایجنسی کو بتایا کہ ان کو یو اے ای بھیجنے کا کام 12 ستمبر سے آرمبھ ہوا ہے۔ اس افغانی پائلٹ کا کہنا تھا کہ یہ کام امریکہ اور ازبکستان کے بیچ ہوئے سمجھوتے کا پریمام ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بتایا کہ ان افغانی پائلٹوں اور ان کے پریوار والوں کی کل سنکھیا 585 ہے۔ گیات رہے کہ حالیہ کچھ ورشوں کے دوران افغانستان کی وایو سینا دوارا طالبان کے ٹھکانوں پر حملوں میں طالبان کو ہونے والی جانی اور مالی نقصان کی وجہ سے طالبان نے ایک گٹ تیار کیا ہے جو اب تک افغانستان کے کئی پائلٹوں کی ہتیا کر چکا ہے۔
امریکیوں نے اپنی سرکار سے کہا ہے کہ وہ اب یدھ کے کارکرموں کو نرست کر کے وکاس کے کاموں کی اور دھیان کیندرت کرے۔ امریکہ میں کیے جانے والے سرویکشن درشاتے ہیں کہ اس دیش کی جنتا یہ نہیں چاہتی ہے کہ ان کی سرکار اب آگے بھی یدھوں میں بھاگ لے۔ سرویکشن کے انوسار 11 ستمبر کی گھٹنا کے بعد سے ہی ادھکانش امریکیوں کا یہ ماننا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کے دیش کو آتنکواد کے ورودھ ابھیان میں کم سے کم بھاگ لینا چاہیے۔ سی بی ایس اور ایک انیہ سنستھا دوارا کرائے گئے سنیکت سرویکشن کے پریڑام یہ درشاتے ہیں کہ ادھکتر امریکی اب یدھ کے اچھک نہیں ہیں۔ اس سنیکت سرویکشن میں لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ آتنکی چنوتیوں کا سامنا کرنے کے لیے امریکہ کو ودیشوں میں جا کر ابھیان چلانا چاہیے یا نہیں۔ 55% لوگوں کا یہ جواب تھا کہ امریکہ کو اس پرکار کے ابھیانوں میں کم سے کم اپستھت رہنا چاہیے۔
عراقی سانسدوں نے اس دیش کے آگامی چناؤ میں امریکہ کے ہستکشیپ کے بارے میں سچیت کیا ہے۔ عراق کے کچھ سانسدوں کا کہنا ہے کہ دیش کے آگامی سنسدیہ چناؤ میں امریکہ کے ہستکشیپ کو نکارا نہیں جا سکتا کیونکہ واشنگٹن نے عراق میں اشانتی پھیلانے کو اپنی کاریہ سوچی میں شامل کر لیا ہے۔ سومریا سماچار ایجنسی کے انوسار عراق کے ایک سانسد عباس شوئل نے کہا کہ امریکی اب یہ پریاس کر رہے ہیں کہ انہوں نے افغانستان میں جو کام کیا ہے اسے عراق میں انجام دیا جائے۔ اسی بیچ عراق کی ایک سانسد ندا شاکر نے اس دیش کے سنسدی چناؤ میں امریکی دوتاواس کی اور سے ہستکشیپ کی سمبھاونا جتائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پربھاؤ اور مہتو کی درشٹی سے کھیتری دیشوں کی تلنا میں عراق کے چناؤ میں انتر ہے۔ اس عراقی سانسد کا کہنا تھا کہ دیش کے چناؤ آیوگ کو اس بارے میں امریکی دوتاواس کی گتیویدھیوں پر نظر رکھنی چاہیے۔
اسرائیلی ڈرون اور لڑاکو ویمانوں نے غزہ پٹی میں فلسطینی پرتیرودھی گٹوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ فلسطین کی شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے انوسار سوموار کو صبح تڑکے اسرائیلی ویمانوں نے غزہ کے دکشن اور رفا شہر کے اتر میں استھت پرتیرودھی ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ اسرائیلی سینا نے یہ دعویٰ کیا کہ کتھت راکٹ حملوں کے جواب میں پرتیرودھی ٹھکانے پر دو بار بمباری کی گئی۔ فلسطینی سوتروں کا کہنا ہے کہ پورے غزہ میں حملے سے ہونے والے دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں اور رفا میں بجلی کی آپورتی ٹھپ ہو گئی۔ اسی بیچ اسرائیل کے لڑاکو اور ڈرون ویمانوں نے غزہ کے نواسیوں میں ڈر پیدا کرنے کے ادیش سے غزہ کے آسمان میں اڑانیں بھری۔ حماس سمیت غزہ استھت فلسطینی پرتیرودھ سنگٹھن اسرائیل کے حملوں کے جواب میں راکٹ فائر کرتے ہیں۔ حالیہ یدھ میں فلسطینی گٹوں نے اسرائیل کے قبضے والے علاقوں پر ہزاروں راکٹ فائر کیے تھے، جس کے بعد زائونی شاسن کو یدھ ورام کے لیے مجبور ہونا پڑا تھا۔ اسی کے ساتھ وشو سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
دوستو، میں ہوں روش زیدی اور آپ کا سواگت ہے راجنیتک چرچا کے دینک کاریکرم میں۔ آج کے کاریکرم میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے غزہ پر ایک بار پھر اسرائیل دوارا کیے گئے حملے کی،
قبل 16 عاما،
اور پھر بات کریں گے افغانستان پہنچے قطر کے ودیش منتری کی،
اگر افغانستان با جامع جہانی نتاند،
اور انت میں چلیں گے بھارت، جہاں گجرات راج میں بنے نئے مکھ منتری کے بارے میں ہمارے سنواد داتا آپ کو بتائیں گے۔
ہوں بھوپندر بھائی رجنی کانت پٹیل۔
تو سب سے پہلے چلتے ہیں فلسطین اور بات کرتے ہیں غزہ پر اسرائیلی سینا دوارا برسائے گئے بموں کی۔ وہیں فلسطینی پرتیرودھک بلوں نے بھی اسرائیل کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اس سمبندھ میں غزہ فلسطین سے آئی آر آئی بی کے سنواد داتا ابراہیم احمد ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی سید میسم کی آواز میں۔
رویوار رات غزہ میں اشانتی تھی۔ اسرائیل کے یدھک ویمانوں نے غزہ کے دکشن اور اتری علاقوں پر بھیشن بمباری کی۔ پرتیرودھ کے اینٹی میزائل سسٹم نے جہاں ان میزائلوں کو ہوا میں ہی نشٹ کرنے کا پریاس کیا، وہیں ان حملوں کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اویدھ کالونیوں کو راکٹ اور میزائلوں سے نشانہ بنایا۔
قبل 16 عاما،
اس بیچ اسرائیلیوں کے پیچھے ہٹنے کی 16ویں ورشگانٹھ کے افسر پر آیوجت ایک سمیلن میں فلسطینی سنگٹھنوں نے غزہ کو پرتیرودھ کے لیے سب سے بہترین مورچہ بتایا۔ اس سمیلن میں فلسطینی سنگٹھنوں نے اس بات پر بل دیا کہ اگر پرتیرودھی بلوں دوارا دیے گئے منہ توڑ جواب سے اسرائیل کو اتنا بھاری نقصان نہیں ہوا ہوتا تو آج ہم اس مضبوط استھتی میں نہیں ہوتے۔
المقاومة هي الوحيدة،
ایک فلسطینی نیتا کا کہنا ہے کہ پرتیرودھ ہی ایک ماتر ایسا راستہ ہے کہ جو ہمارے سمان کو ہمیں واپس دلا سکتا ہے اور دنیا میں فلسطین کو گورانوت کر سکتا ہے۔ हमें प्रतिरोधी बलों का भरपूर समर्थन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीनी जनता का मनोबल उस समय और बढ़ गया जब उन्होंने कस्सा ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा के भाषण को सुना। अबू उबैदा ने इस बात पर बल दिया है कि जेल तोड़कर भागने वाले 6 फिलिस्तीनी कैदी, विशेषकर वे 4 कैदी जो दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कैदियों के आदान प्रदान की सूची में सबसे ऊपर रहेंगे। इस भाषण से कैदियों और उनके परिवार वालों की उम्मीद बढ़ गई है। प्रतिरोधी बलों के एक नेता का कहना है कि प्रतिरोध ने अपने स्टैंड को स्पष्ट कर दिया है। जब तक 6 जियाले कैदी आजाद नहीं हो जाते, तब तक किसी भी तरह के कैदियों का आदान प्रदान नहीं होगा। इसराइल चाहता था कि फिर से 6 जियाले कैदियों को गिरफ्तार करके अपनी हार की खिसियाहट को मिटा लेगा। हमारा मानना है कि इस घटना ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। इसराइल की सुरक्षा ढह गई है। हम अपने कैदियों को बता देना चाहते हैं कि जब तक वे आजाद नहीं हो जाते, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। एक अन्य प्रतिरोधी बल के नेता का कहना है कि ये प्रतिरोधी बल ही हैं जो इसराइल की जेलों में बंद अपने कैदियों को आजाद करा सकते हैं। इससे पहले भी प्रतिरोधी बलों ने ऐसा करके दिखाया है। जब तक इसराइली सैनिक प्रतिरोधक बलों के पास हैं, तब तक हम भविष्य में भी अपने कैदियों को आजाद करा सकते हैं। प्रतिरोध केवल एक नारा नहीं है, बल्कि हमलावरों के लिए एक डरावना सपना है और फिलिस्तीनियों के लिए उम्मीद की किरण, क्योंकि फिलिस्तीनी जनता ने प्रतिरोधी बलों की कार्रवाइयों को अपनी आंखों से देखा है।
इब्राहिम अहमद, खबर गुजारी सदा वसीमा, गजा, फिलिस्तीन।
और अब चलते हैं अफगानिस्तान और बात करते हैं इस देश की यात्रा पर पहुंचे कतर के विदेश मंत्री की, साथ ही जानेंगे पंजशीर घाटी की जमीनी सच्चाई को। इस बारे में पंजशीर घाटी से IRIB के संवाददाता बहनाम यजदानी अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ ही अख्तर अब्बास की आवाज में।
कतर के विदेश मंत्री उच्च पद पर बैठे ऐसे पहले अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार बनने के बाद काबुल दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अफगान राष्ट्रपति भवन पहुंचकर तालिबान कैबिनेट के प्रमुख से मुलाकात की है। इस भेंटवार्ता में तालिबान के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मुलाकात में मानवीय सहायता और अन्य देशों के साथ तालिबान के सहयोग पर चर्चा की गई। मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान आल सानी ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुलह परिषद के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल्ला अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम और एक व्यापक प्रणाली की स्थापना पर भी चर्चा की गई। किसी विदेश अधिकारी की अफगानिस्तान यात्रा ऐसी स्थिति में हो रही है कि तालिबान लगातार विश्व समुदाय से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है।
अगर अफगानिस्तान با جامعه جهانی نتونه تعامل منطقی داشته باشه,
एक अफगान टीकाकार का कहना है कि अगर अफगानिस्तान विश्व समुदाय के साथ अपने संबंध स्थापित करने में कामयाब नहीं होता तो ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान को बहुत सारी नई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद पर निर्भर है। इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के प्रमुख भी अफगानिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे थे।
اینجا مرکز شهرستان روخه استان پنشیر است.
اس بیچ افغانستان کے پنشیر گھاٹی پہنچے ہمارے سمواددتا نے بتایا کہ اس پرانت کی 99% دکانیں ابھی بند ہیں. ان دکانوں کے مالک یا طالبان کے ڈر سے بھاگ گئے ہیں یا یدھ کے ڈر سے, جبکہ کچھ اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی دکانیں نشٹ کر دی جائیں. کل ملا کر پنشیر میں موت کا سناٹا چھایا ہوا ہے.
بہنام یزدانی, خبرگزاری صدا و سیما, دریای پنجشیر.
और अब रुक करते हैं भारत का और बात करते हैं भारत के राज्य गुजरात की। 61 वर्षीय भूपेंद्र भाई पटेल ने विजय रूपाणी का स्थान लेते हुए गुजरात के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल,
ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छू के
61 वर्षीय भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं, जिन्होंने आज इस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने विजय रूपाणी का स्थान लिया है, जिन्होंने शनिवार को अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। यद्यपि भाजपा के कई नेता मुख्यमंत्री के पद की दौड़ में थे, लेकिन भाजपा विधायक दल की बैठक में पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल के नाम पर सहमति बनी। भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने गांधीनगर में पार्टी मुख्यालय में कल भूपेंद्र पटेल को नया मुख्यमंत्री मनोनीत किए जाने की घोषणा की थी। इस पद के दावेदारों में उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी थे। बताया जाता है कि भूपेंद्र पटेल इस पद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पसंद थे। शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने भी भाग लिया, जहां भूपेंद्र पटेल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।
हूँ भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल।
ईश्वर ने नामे सौगंध लऊ छू के हूँ गुजरात राज्य न मुख्य मंत्री तरीके।
राजनीतिक टीकाकारों का कहना है कि भाजपा ने गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री का पद देकर एक बड़ा जुआ खेला है। इससे पहले भाजपा ने घोषणा की थी कि वर्ष 2022 का गुजरात विधानसभा चुनाव विजय रूपाणी और नितिन पटेल की जोड़ी के साथ ही लड़ा जाएगा। यद्यपि भाजपा लंबी अवधि से गुजरात में सत्ता में रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब से दिल्ली की गद्दी संभाली है, गुजरात में भाजपा के लिए नेतृत्व का संकट रहा है। नरेंद्र मोदी के जाने के बाद आनंदी बेन ने कमान संभाली थी, उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा और फिर विजय रूपाणी को कमान सौंपी गई थी। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करने के लिए काफी मुशक्कत करनी पड़ी थी, तब विजय रूपाणी ही मुख्यमंत्री थे। कोरोना संकट काल में गुजरात सरकार के कामकाज को लेकर काफी सवाल उठे थे और लोगों का गुस्सा विजय रूपाणी के प्रति बढ़ रहा था। इसके अलावा भाजपा ने लंबे समय से चल रही पटेल समुदाय की नाराजगी को भी दूर करने का प्रयास किया है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने विधानसभा चुनाव से एक साल पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। भाजपा इससे पहले कर्नाटक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदल चुकी है और असम में चुनाव बाद नेतृत्व परिवर्तन भी कर चुकी है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
दोस्तों, इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। दोस्तों, हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा जल संकट, लेकिन उससे पहले प्रस्तुत है कार्यक्रम विश्व दर्पण।
विश्व दर्पण।
दोस्तों, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम अफगानिस्तान में बनी तालिबान की अंतरिम सरकार के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहें। अफगानिस्तान से 20 साल बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों की अपमानजनक वापसी के बाद अब पूरा अफगानिस्तान तालिबान के नियंत्रण में है और आखिरकार तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार की भी घोषणा कर दी है, जिसके प्रमुख मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद होंगे। तालिबान की नई कैबिनेट की जानकारी देते हुए प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बताया,
मोहतरम अलहाज मुल्ला मोहम्मद हसन अफंद सरपरस्ती रियासत वज़रा।
तालिबान प्रवक्ता की घोषणा के अनुसार मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद अफगान सरकार के प्रधानमंत्री होंगे और मुल्ला ब्रादर उप प्रधानमंत्री होंगे। इसी तरह जबीउल्ला मुजाहिद प्रवक्ता मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद रक्षा मंत्री, मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री, अमीर खान मुत्तकी विदेश मंत्री, मुल्ला हिदायतुल्ला बद्री वित्त मंत्री, मुल्ला खैरुल्ला खैर खा सूचना व प्रसारण मंत्री, कारी दीन मोहम्मद हनीफ आर्थिक मंत्री और मौलवी अब्दुल हकीम शरी विधि मंत्री होंगे। साथ ही कई अन्य मंत्रालयों के मंत्रियों के नाम का भी ऐलान किया गया। इस बीच तालिबान कैबिनेट की घोषणा के बाद जहां अफगान पक्षों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, वहीं विश्व भर से इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं अफगानिस्तान के शिया धर्म गुरुओं की परिषद का कहना है कि तालिबान की अंतरिम कैबिनेट का गठन देश की जनता की उम्मीदों के खिलाफ है। अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा बनाई गई नई अंतरिम सरकार के बारे में पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनीतिक टीकाकार नवेद हैदर तकवी का कहना है कि
जिस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था और गुज़िश्ता कई हफ्ते से तालिबान की तरफ से भी ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि अफगानिस्तान में एक वसीउल बुनियाद कौमी हुकूमत जो है उसके लिए मुज़ाकरात जो है वो चल रहे हैं और कुछ साबिक अफगान अहदेदारों के भी इस हवाले से बयानात और मीडिया में उनकी तस्वीर भी जो है वो जारी की गई थी। लेकिन इंतज़ार की घड़ियां जब ख़त्म हुई और जब तालिबान ने अपने इन 33 वज़रा का ऐलान किया तो सब पर ये वाज़े हो गया कि तालिबान ने जिस चीज़ को ज़ाहिर करने की कोशिश की थी उस पर अमल नहीं किया और अफ़गानिस्तान के मारूजी हालात जिस चीज़ का तकाजा कर रहे थे और ख़ुद अफगानिस्तान में मौजूद जो सियासी धड़े थे उनकी भी मसलन नस्बी एक कहा जाए कि आमादगी ऐसी थी कि वो मुज़ाकरात तालिबान के साथ करने के लिए आमादा हैं और वफूद की सतह पर भी बहुत से मसलन धड़े मुलाकात करने पर आमादा थे। लेकिन जब ये ऐलान किया गया तो वो तमाम के तमाम कहा जाए कि अंदाजे गलत साबित हुए। तालिबान ने एक खालिसतन अपनी एक नजरियाती काबीना का जो है वो ऐलान किया।
वहीं अब इस बात का कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि अफगानिस्तान में तालिबान ने एक बार फिर से अपनी सरकार बना ली है। दुनिया ये भी जानती है कि इस समय अफगानिस्तान की जो स्थिति है उसके लिए पूरी तरह अमेरिका ही जिम्मेदार है। वियतनाम युद्ध के बाद एक बार फिर अफगानिस्तान में भी अमेरिका को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। इस बीच अब दुनिया के कई देश यहाँ तक कि तालिबान के साथ सहयोग के लिए तैयार हैं। वहीं भारत सहित कई ऐसे देश हैं जो वेट एंड वॉच की नीति अपनाए हुए हैं। इस बारे में भारत के राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी अपने विचार कुछ इस तरह रखते हुए कहते हैं,
सारे देश वेट एंड वॉच की पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं इस समय क्योंकि काबुल में अब एक टेररिस्ट सरकार बनी है। इसका जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद हसन अखुंड, वो ना केवल यूएन लिस्टेड टेररिस्ट है, उसके अलावा वो जब बुद्धास थे ना बमियान के जब वो गिराए गए तो मोहम्मद हसन अखुंड उस डिस्ट्रक्शन का एक आर्किटेक्ट था और वही बंदा अब आज प्रधानमंत्री बन के आया है। तो अगर इस सरकार को दुनिया लिजिटिमाइज करती है, इसको एक्सेप्टेबल बनाती है, तो ये पूरे दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा और भारत के लिए स्पेशली, क्योंकि भारत तो अफगानिस्तान के बगल में है, अमेरिका और उसके जो वेस्टर्न अलाइज हैं बहुत ही दूर हैं अफगानिस्तान से। तो तो जो भी स्ट्रेटेजिक फॉल आउट होगा वो पहले भारत पर पड़ेगा। तो भारत के लिए ये स्थिति बहुत ही ग्रेव है।
इस बीच अमेरिका की अपमानजनक वापसी के साथ ही जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण किया था और जिस तरह के बयान तालिबान की ओर से लगातार आ रहे थे, तो दुनिया भर में ये बात होने लगी थी कि पहले वाले तालिबान और अब वाले तालिबान में काफी अंतर है। यही कारण था कि दुनिया को इस बात का इंतजार था कि तालिबान अपनी नई सरकार में अफगानिस्तान के सभी वर्गों और पक्षों को भागीदार बनाएगा और एक व्यापक कैबिनेट का गठन करेगा। इस बात का अनुमान इसलिए भी लगाया जा रहा था क्योंकि काबुल पर तालिबान के नियंत्रण के बाद तालिबान लगातार अफगानिस्तान की राजनीतिक हस्तियों से मुलाकात कर रहे थे। इनमें अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और पूर्व अफगान अधिकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला भी थे। लेकिन तालिबान की अंतरिम सरकार की कैबिनेट की जो लिस्ट आई है उसमें केवल तालिबान से जुड़े हुए ही लोग शामिल हैं। इस चीज को लेकर सभी हैरान हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस बारे में पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनीतिक टीकाकार फारूक चौहान कहते हैं,
ये बात सही है। अफगानिस्तान में आपके इलम में है कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला से भी तालिबान की मुलाकातें हुई, उनके रहनुमाओं की, फिर हिकमत यार से हुई, फिर इस तरह हामिद करजई से हुई, और जाहिर है कि ये एक पेशरफ्त सुनने में आ रही थी कि ये जो तालिबान की हुकूमत में लोग शामिल होंगे, जाहिर है कि वहां पे अफगानिस्तान का भी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले। लेकिन अफगानिस्तान बाकी के कबायली रवायात हैं, वहां गिरजा होता है, नजीबुल्ला की हुकूमत खिताब भी लोया गिरजा, हर हामिद करजई ने भी गिरजा बनाया था। लोया गिरजा का एक अपनी होती है और उनका एक निजाम है जो अफगान में चला आ रहा है और वहां का कल्चर है, रवायात है। मैं इसमें अर्ज करूंगा, इसमें जो मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे असल में हमें मौका देना चाहिए इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत जो बन रही है और जिसमें तो अभी अबूरी काबीना बनी है, तो उसमें वो ये कहा तो यही जा रहा था और बेहतर भी यही है तालिबान के लिए कि वसी और बुनियाद हुकूमत बननी चाहिए जिसमें सारे स्टेक होल्डर शामिल हों, इसमें शमाली तहत के लोग भी हों, पख्तूनों की नुमाइंदगी भी हो। जाहिर है वहां अजबक ताजिक जो है वो उन तुर्कमेनिस्तान, लेकिन ये तो जो वहां के जो कबाइल हैं जो वहां की वो सब शामिल होने चाहिए और उसपे ही ज्यादा बेहतर होगा। आपने भी कहा अभी बात हो रही थी पाकिस्तान की हुकूमत ने भी अभी यार इसको तस्लीम नहीं किया, ईरान ने तस्लीम नहीं किया।
वही तालिबान को लेकर दुनिया दो भागों में बढ़ती नजर आ रही है। जहां बहुत सारे देश तालिबान को अभी भी वही पुराने तालिबान के रूप में देख रहे हैं और किसी भी स्थिति में उसको मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है, वहीं कुछ देश ऐसे हैं जिनका कहना है कि 2001 के तालिबान और 2021 के तालिबान में अंतर है। साथ ही वो तालिबान सरकार को मान्यता देने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तालिबान बदल गए हैं या उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। इस बारे में भारत के वरिष्ठ राजनीतिक टीकाकार प्रोफेसर मोहम्मद अरशद का कहना है कि
देखिए, तालिबान जो है, जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि एक ऐसा ग्रुप है जो जिसमें के तरह तरह के लोग शामिल हैं और उनमें खुद उनके अपने मफादात भी हैं और जिस तरह की सूरत हाल में वो अचानक इख्तदार में एक तरह से आए हैं, उन्हें भी शायद ये उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका इतनी तेजी के साथ अफगानिस्तान छोड़ करके निकल जाएगा और अफगानों को इस हाल में छोड़ेगा, या जो है अमेरिका के निकल जाने के बाद भी जो है जो अफगानिस्तान की फौज थी जिसे कि अमेरिका ने ट्रेंड किया था वो इस तरह सरेंडर कर जाएगी, अचानक जो है बिल्कुल सारा एक खला पैदा हो जाएगा। उसकी तवक्को शायद अफगान तालिबान को नहीं थी, और इसी वजह से शायद उनका यानी दोहा ऑफिस भी जो है उसका कोई अंदाजा नहीं कर सका, और जो है जो उनकी क्यादत थी वो उसे भी नहीं था कि वो पहले से कुछ तय कर लेते। और जिस तरह का जो है 2001 से पहले की सूरत हाल थी, जो उनको कुछ मसाइल वहां पे पेश आए थे, तालिबान नहीं चाहते हैं कि उनको दोहराया जाए, बिल्कुल ये कह देना कि कोई तब्दीली नहीं आई है, पहले से ज्यादा जो है वो शिद्दत पसंद हो गए हैं, ऐसा कहना शायद मेरा ख्याल है कि ज्यादती होगी। और इसमें कोई शुबा नहीं कि जाहिर सी बात है आप किसी ऐसे ग्रुप से जिसके के अपने नजरियात हों और अपने ख्यालात हों, इस तरह की तवक्को भी फौरन नहीं कर सकते कि उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी और वो सचमुच एक ऐसी इंक्लूसिव गवर्नमेंट जिसमें के सभी जो है तबकात की नुमाइंदगी हो बनाने में आसानी से कामयाब हो जाएगा। तो तालिबान के बारे में एकदम ये कह देना कि वो पहले वाले तालिबान या उससे भी ज्यादा मुतशद्दिद हो गए हैं वो भी दुरुस्त नहीं, और ये कहना कि बिल्कुल बदल गए हैं वो भी शायद दुरुस्त नहीं है। तालिबान को मुझे लगता है कि जिस तरह के हालात हैं अफगानिस्तान में और जिस तरह का जो है सूरत हाल पैदा हुई है उसमें खुद उसकी लीडरशिप को ये अंदाजा हो रहा है कि हम शायद जो है अपनी एक अच्छी या जो है जिसे कह सकते हैं कि दुनिया तस्लीम कर सके उस तरह की शबीह या तस्वीर जो है दुनिया के सामने नहीं पेश कर पा रहे हैं।
मिलाकर 20 साल बाद एक बार फिर तालिबान अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गए हैं। ये भी सच है कि सरकार के गठन से पहले तालिबान ने जो बयान दिए थे और जिस तरह की बातें की थी उसकी तस्वीर कैबिनेट में तो देखने को नहीं मिली है, और यही कारण है कि जहां अफगानिस्तान में नई कैबिनेट के गठन पर व्यापक नकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वहीं दुनिया भर के देशों में भी चिंता साफ दिखाई दे रही है। बहरहाल अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि तालिबान की नई सरकार पहले जैसा ही काम करेगी, क्योंकि उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अगर तालिबान चाहते हैं कि दुनिया उनको मान्यता दे दे तो सबसे पहले उन्हें एक व्यापक सरकार का गठन करना होगा और उसमें हर वर्ग के लोगों को भागीदार बनाना होगा। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि तालिबान ऐसा करते हैं कि नहीं। अगर तालिबान ने अफगानिस्तान के हर वर्ग को सरकार में भागीदार नहीं बनाया तो इस बात की आशंका बढ़ जाएगी कि आने वाले दिनों में भी अफगानिस्तान में शांति व स्थिरता का स्थापित होना मुश्किल होगा और ये देश फिर से गृह युद्ध की आग में जलने लगेगा। तो दोस्तों, कार्यक्रम विश्व दर्पण का समय अब यहीं समाप्त होता है, हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
जल संकट।
दोस्तों कार्यक्रम जल संकट की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और गायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
इंसान के जीवन में पर्यावरण को संवारने और विकास के कार्यों के लिए पानी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान के इतिहास में पानी के विषय में बहुत से निर्माण कार्य किए गए हैं। आइस हाउस ईरान की प्राचीन वास्तुकला के नमूने हैं, जिनका निर्माण पानी के सदुपयोग के लिए किया गया। प्राचीन आइस हाउस दरअसल शंकुआकार इमारत होती थी, जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर बनाई जाती थी। ये इमारत वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। ये प्राचीन इमारतें बहते पानी को बर्फ बना देती थीं।
आइस हाउस ईरान के मैदानी इलाकों में प्रचलित इमारतें थीं, जो शताब्दियों तक ईरान के लोगों की पानी की जरूरत पूरी करती रहीं। जिस तरह जल भंडारण के लिए बड़े बड़े हौज और तालाब बनाए जाते थे, उसी तरह आइस हाउस का निर्माण बर्फ को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। सर्दी के मौसम में जब बर्फ पारी होती थी, यानी साल के ठंडे महीनों में चारों तरफ फैली बर्फ को आइस हाउस में सुरक्षित कर लिया जाता था, फिर गर्मी का मौसम आने पर उसे इस्तेमाल किया जाता था।
चूंकि ईरान का बड़ा भूभाग गर्म और शुष्क वातावरण वाला है, इसलिए यहाँ गर्मी का मौसम जरा लंबा होता है और गर्मी के मौसम में ठंडे पानी और आइसक्रीम का इस्तेमाल बड़े चाव से किया जाता है। इसके अलावा गोश्त, दूध और खाने पीने की दूसरी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए भी बर्फ की जरूरत पड़ती है।
जरूरत के अनुसार ठंडक या गर्मी पैदा करने वाले कारकों का इस्तेमाल ईरान की पारंपरिक वास्तुकला के बुनियादी उसूलों में था। जिस तरह धूप और घर में लगाए जाने वाले मसाले को उष्मा पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसी तरह निर्माण कला में इस बात का भी ख्याल रखा जाता था कि प्राकृतिक कारकों की मदद से गर्मी के मौसम में घरों को कैसे ठंडा किया जाए।
आइस हाउस के इतिहास की बात की जाए तो सफवी काल तक जो इसका इतिहास है, उसका सटीक और व्यापक जानकारियां नहीं है। हालांकि इतिहास की किताबों, कहानियों और शायरी में सफवी काल से पहले के दौर के बारे में भी मिलता है कि बर्फ का इस्तेमाल किया जाता था, मगर ये नहीं बताया गया है कि बर्फ कैसे बनती थी। इस संदर्भ में बहुत पुराना दस्तावेज फ्रांसीसी सैलानी जीन शार्डन का यात्रा वृत्तांत है, जिन्होंने सन 1666 में इस्फहान का सफर किया था। उन्होंने बताया कि किस तरह इस्फहान में बर्फ बनाई जाती थी।
शार्डन लिखते हैं कि बर्फ शहर के बाहर एक खुली जगह पर बेची जाती थी। बर्फ बनाने का तरीका ये था कि उत्तर की दिशा में एक गहरा गड्ढा बना दिया जाता था और उसके ठीक सामने 40 से 50 सेंटीमीटर गहरा छोटा सा हौज बनाया जाता था। रात के समय उनमें पानी भर दिया जाता था। सुबह के समय जब ठंड से पानी बर्फ बन जाता था तो उसे बेलचे या किसी और चीज से टुकड़े कर लिया जाता था। ये सारे टुकड़े गहरे गड्ढे में भर दिए जाते थे। उसके भीतर इस बर्फ को कूटा जाता था ताकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाए। बर्फ जितनी बारीक हो जाती थी उतनी बेहतर अंदाज में जमती थी।
इसके बाद वर्गाकार गड्ढे को बीते दिन की तरह फिर पानी से भर दिया जाता था। इसके बाद कम से कम 8 दिन लगातार मेहनत के बाद 5 से 6 फुट मोटे बर्फ के टुकड़े तैयार हो जाते थे। फिर मोहल्ले के आम लोगों को जमा किया जाता था। सारे लोग गाते बजाते और खुशियां मनाते काम में लग जाते थे। लोग गड्ढे में उतर जाते और बर्फ के बड़े टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रख देते थे। टुकड़ों के बीच में पानी डाल दिया जाता था ताकि वो आपस में मजबूती से जुड़ जाए। ये सारा काम हो जाने के बाद आइस हाउस के मुहाने को मसाले से बंद कर दिया जाता था।
شاردن نے اس کے بعد لکھا کہ جب گرمی کا موسم آتا ہے اور آئس ہاؤس کا مہانہ کھولا جاتا ہے تو وہ دن بھی جشن کا دن ہوتا ہے۔ برف کے ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے باہر نکالا جاتا ہے اور بیچا جاتا ہے۔ محلے کے جن لوگوں نے اس پوری پرکریا میں محنت کی ہوتی تھی انہیں ان کے حصے کی کچھ برف دی جاتی تھی۔ ایران کے آئس ہاؤس کی اس برف میں کی خاص بات یہ ہے کہ بہت صاف ہوتی ہے، اس لیے کہ اسے ہر طرح کی گندگی سے بچایا جاتا ہے۔
ایران کے یہ پراچین آئس ہاؤس دراصل انسان، پرکرتی، واستوکلا کے بہترین سنگم کے نمونے ہیں۔ ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان الگ الگ موسموں میں پرکرتی کے بدلتے مزاج سے کیسے پیش آتا ہے۔ پورے ایران میں اور وشیش روپ سے گرم اور ششک علاقوں میں جہاں تھکا مارنے والی گرمی پڑتی ہے، برف لوگوں کی مہتوپورن ضرورتوں میں گنی جاتی تھی۔ اس سے پانی اور شربت کو ٹھنڈا کرنے کے ساتھ ہی کھانے پینے کی چیزوں کو بھی اس کی مدد سے سرکشت کیا جاتا تھا۔ شہروں اور گاؤں میں پانی کے لیے کنویں، تالاب اور جل بھنڈار بنائے جاتے تھے، اور اس کے عام طور پر جن سیوا کے روپ میں بنایا جاتا تھا، مگر آئس ہاؤس کا نرماڑ آمدنی کے لیے کیا جاتا تھا کیونکہ وہاں جمائی جانے والی برف بیچی جاتی تھی۔
برف جمانے کی پرکریا کی شروعات بھومیگت جل نیٹورک کے زمانے سے ہوئی۔ یہ نیٹورک بھومیگت نالیوں کے ذریعے بنایا جاتا تھا۔ گرمی میں اس کے مادھیم سے پانی کی سپلائی ہوتی تھی، جبکہ سردی میں نالیوں میں پانی جم جاتا تھا۔ کبھی کبھی نالیوں کا پانی پہاڑوں پر جمی برف کے پگھلنے سے آتا تھا۔ برف جمانے اور اسے زیادہ سمے تک سرکشت رکھنے کے لیے زمین کے بھیتر گہرا گڈھا کھودا جاتا تھا اور برف کو وہاں رکھا جاتا تھا۔ برف کو سرکشت رکھنے کے لیے ایران میں کئی پرکار کے آئس ہاؤس بنائے جاتے تھے۔ ایک تو شنکو آکار آئس ہاؤس ہوتے تھے اور دوسرے بھومیگت برف بھنڈار ہوتے تھے۔
کچھ آئس ہاؤس ایسے ہوتے تھے جن میں برف رکھنے کے گڈھے کے اوپر بڑا گنبد بنایا جاتا تھا۔ برف کے گڈھے کے نیچے پانی کی ایک نالی بنائی جاتی تھی، برف پگھل کر پانی بنتی تھی اور وہ پانی اسی نالی سے بہ کر نکلتا تھا۔ تہران، ساوے، زنجان، ہمدان اور تبریز میں الگ پرکار کے آئس ہاؤس بنائے جاتے تھے۔ یہ آئس ہاؤس بھومیگت ہوتے تھے اور ان کی دیواریں چٹان کے ٹکڑوں یا اینٹ اور مسالے سے بنائی جاتی تھیں جو بہت موٹی ہوا کرتی تھیں۔ ان کی چھت اینٹ کی ہوتی تھی اور اس کا آکار طاق یا محراب جیسا ہوتا تھا۔
اس فن میں الگ پرکار کے آئس ہاؤس بنائے جاتے تھے۔ ان کی دیواروں کی اونچائی 4 سے 5 میٹر ہوتی تھی اور لمبائی 12 میٹر تک ہوتی تھی۔ دیوار کی اتری دشا میں 5 سے 6 میٹر گہرا اور 12 میٹر لمبا اور 5 میٹر چوڑا ہاؤس بنایا جاتا تھا۔ رات میں برف بنائی جاتی تھی اور بھور سمے اسے ہاؤس میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد برف کے بھیتر 1 سے 2 میٹر اونچی گھاس کی تہ لگا دی جاتی تھی۔ سال کے گرم مہینوں میں اس برف کو دھیرے دھیرے استعمال کیا جاتا تھا۔
آئس ہاؤس کے 3 بھاگ ہوتے تھے: چھایا کرنے والی لمبی دیوار، برف بنانے کا حوض اور برف کو سنچت کرنے کے بھنڈار۔ برف کا بھنڈار 2 روپ میں بنایا جاتا تھا: گنبد روپی بھنڈار اور سرنگ روپی بھنڈار۔ ہر آئس ہاؤس کی یہ بات سمان تھی کہ اس میں برف رکھنے کے لیے کافی گہرا گڈھا بنایا جاتا تھا۔ گنبد کے آکار والے آئس ہاؤس کے گڈھے کی شکل 4 میٹر کے ویاس کے گول گڈھے کی طرح ہوتی تھی۔ سرنگ روپ آئس ہاؤس کا گڈھا گول کے بجائے لمبا ہوتا تھا۔ ان گڈھوں کی गहराई अलग अलग हुआ करती थी। जिस मात्रा में बर्फ का भंडारण करना होता था उसी हिसाब से गड्ढे की गहराई रखी जाती थी। कभी कभी तो इसे 10 मीटर गहरा बनाया जाता था।
वास्तुकला के नमूने हों या भूमिगत नालियों का नेटवर्क, इनको देखकर यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि ईरानियों में बर्फ के साथ ही पानी को भी सुरक्षित रखने पर बहुत ध्यान दिया जाता था। इस बात पर भी विशेष तवज्जो रखी जाती थी कि पानी न तो व्यर्थ हो जाए और न ही गंदा हो। चूंकि ईरान के क्षेत्रफल को देखा जाए तो इसका बड़ा भाग मरुस्थलीय है, इसलिए इन इलाकों में बसने वाले लोगों को पानी के महत्व का पूरी तरह एहसास है। वैसे ईरान के उन इलाकों में भी जहां अच्छी मात्रा में वर्षा होती है, पानी के महत्व का लोगों को बखूबी अंदाजा है और इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि पानी नष्ट न होने पाए।
ईरान में ये परंपरा आज तक चली आ रही है कि पानी को ना तो नष्ट होने दिया जाए और ना ही उसमें गंदगी डाली जाए। पानी दरअसल जीवन की बुनियाद है, इसलिए इसके महत्व को समझना और इसको नष्ट होने से बचाना हर एक की जिम्मेदारी है। पानी जहां एक तरफ जीवन का मूल तत्व है, वहीं अगर इसकी सुरक्षा न की जाए और इसको गंदा कर दिया जाए तो यही पानी बीमारियां फैलाने का सबब बन सकता है। इस समय दुनिया में अनगिनत बीमारियां हैं जिनकी वजह गंदा और दूषित पानी है। दुनिया के बहुत से देश हैं जहां की एक बड़ी समस्या पीने के लिए साफ पानी का अभाव है। इन देशों के लोग दूषित पानी पीने पर मजबूर हैं, जिसके नतीजे में उनको अलग अलग प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दूषित पानी से फैलने वाली कुछ बीमारियां तो इस तरह व्यापक रूप से फैलती जा रही हैं कि लगता है कि जैसे महामारी फैल रही है।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, अपनी प्रतिक्रियाएं आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsiribir। इसी के साथ हमारी ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। आपसे अनुमति चाहते हैं। खुदा हाफिज़।